नामक जो शास्त्र है, उस शास्त्र का जो दिव्य ध्वनि सार नामक जो गुरुदेव के प्रवचन का जो शास्त्र है, वह हम देख रहे हैं पृष्ठ क्रमांक 24। देखो, बात ये चल रही है कि जिसे अपने आत्मा का अनुभव हुआ है उन्हें भगवान का नाम लेने में अच्छा लगता है, यानी उन्हें भगवान सुहाते हैं ऐसा कहते हैं, और जिन्हें अपने आत्मा का अनुभव नहीं है ऐसा आत्मा का नाम लेते या भगवान का नाम लेते उनका मस्तक भड़क जाता है। क्या आत्मा 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 करते हैं? हमें तो ऐसे लोग मिले थे कि आप आत्मा दिखाओ वो हम देखें और बाद में हम आत्मा को मानेंगे। यानी देखो कैसी बात है कि जो अपना स्वयं का स्वभाव है, अपना स्वयं का स्वरूप है, मैं स्वयं वही हूं, उसकी भी उसे मान्यता करने में तकलीफ हो रही है। क्योंकि आज तक अनादिकाल से ये पंचेंद्रिय के द्वारा या मन के द्वारा इस जीव ने यह पुद्गल को ही जाना देखा है और उस रूप ही स्वयं को अनुभव किया है, इसलिए वो कहता है आत्मा हो तो बताओ। अगर आप जो कुछ एक क्या बोलते हैं मुहावरा मराठी में है उसको अगर समझेंगे तो उसमें ऐसा कहते हैं कि बाप दिखाओ नहीं तो श्राद्ध करो। यानी तुम्हारा पिता है क्या? नहीं। बोले किधर है दिखाओ नहीं तो उसका श्राद्ध करो। तो श्राद्ध कभी करते मालूम है आपको? पिता मरने के बाद। अब स्वर्गवासी होना अच्छा नहीं लगता है क्योंकि सभी पिता स्वर्गों में जाए ऐसी गारंटी नहीं ना, इसलिए तो क्या कहा। वैसा वो कहते हैं कि पहले आत्मा दिखाओ, तुम दिन भर आत्मा 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 करते हो, आत्मा कहाँ है वो तो दिखाओ हमें, पर क्या करें कि जो मेरा स्वयं का स्वरूप है उसी को उसने नकार किया है, पर भगवान को तो मानता नहीं है, भगवान के स्वरूप को पहचानता नहीं है, उतना तो नहीं तो अपने को ही भी नहीं मान रहे, यानी जो स्वयं नहीं है उसको मैं हूं ऐसा मान रहे, ये ऐसी दिक्कत है। यानी खोजने वाला ही खो गया है, ख्याल में आया, ऐसी ये बात है। तो यहां पर ये बात बता रहे हैं कि जिन्हें अपनी आत्मा का भाव भाषण हुआ है उन्हें भगवान का नाम अच्छा लगता है। भगवान का नाम तो ठीक, यहां तो कह रहे हैं कि अच्छा लगता है, यानी जिन्होंने हमें ये मार्ग बताया है ऐसे भगवान के प्रति अहोभाव आए बिना रहेगा नहीं। तो उसके आगे का पैराग्राफ हम पढ़ते हैं, नाम को जानने वाला ज्ञान स्व को और पर को जानता है। ये नाम यानी क्या, ये भगवान का नाम जो है उसको जानने वाला ज्ञान स्व को और पर को जानता है। इस तरह ज्ञानी को ही सच्चा नय और निक्षेप होता है। ये नय क्या होता है और निक्षेप क्या होता है कौन बता पाएगा, अपनी बात हुई है तत्वार सूत्र में। हाँ देवेंद्र भाई, नय काहे में होता है और निक्षेप काहे में होते हैं, किसमें नाम निक्षेप कहते हैं। हाँ अच्छा, हाँ हाँ अच्छा, निक्षेप कितने होते हैं। तो अभी आपने नाम निक्षेप कहा, तो स्थापना निक्षेप किसको कहेंगे, स्थापना निक्षेप किसको कहेंगे। अभी आपने नाम निक्षेप बोला था, किसका, वो मूर्ति का, कोई बात नहीं। मैंने प्रश्न ये पूछा था, नए किसमें लगते हैं और निक्षेप किसमें लगता है। नए किसको कहते हैं नहीं पूछा मैंने। हाँ हाँ लक्ष्मी आप बताएं। नए ज्ञान में लगते हैं। देखो क्या उत्तर है इनका, सुना कि नए जो है वो ज्ञान में लगते हैं, नए ज्ञान में होते हैं और निक्षेप ज्ञेय में होते हैं, ख्याल में आया। यानी उसमें भेद करके, हम उसमें ज्ञेय पदार्थों में भेद करके उसमें निक्षेप लगते हैं, और उसमें नाम निक्षेप, स्थापना निक्षेप और आगे के दो कौन से हैं, भाव और। अरे भाई वो सबसे सीनियर आदमी है और वही गलती करे तो बाकियों की क्या तकलीफ है, उनको तो आना चाहिए क्योंकि वो तो हमारे वन ऑफ द टॉप मोस्ट। हाँ तो द्रव्य निक्षेप किसको कहेंगे और भाव निक्षेप किसको कहेंगे, याद नहीं, कोई बात नहीं। हाँ बोलो बहन। हाँ मेरे को द्रव्य और भाव निक्षेप में फर्क चाहिए। नहीं ऐसा नहीं है। हाँ बोलो बहन। उसको द्रव्य निक्षेप। हाँ देखो राजा है ना, राजा, वो राजा अभी कोई, मैं उस गांव में गया और मुझे राजा कौन है मालूम नहीं है, और यहाँ मंदिर में एक आदमी को देखा तो वो पूजा कर रहा था, तो हमने उसको ये पुजारी ऐसा कहा, तो पुजारी का मतलब क्या हुआ कि वो था तो राजा लेकिन अभी वर्तमान में पूजा कर रहा है, तो उसको पुजारी कहने में कोई गलती है नहीं। वर्तमान में उसकी जो अवस्था है वो अब हम कहते हैं ये आपके पहला तीर्थंकर भविष्यकाल का कौन होगा? हाँ, श्रेणिक राजा। तो राजा को अभी हम वो कभी होगा ना, तो वो आगे और अभी पुराना मतलब भूतकाल का जो है उसको हम द्रव्य निक्षेप से कहेंगे, ख्याल में? अब आगे तो हमारी क्या बात है रही हो रही हा? बताया ना, अभी जो राजा होगा वो भविष्य में कोई कार्य शिकार करता होगा तो वो शिकारी होगा, और आप उसको शिकारी कहेंगे तो कोई गलती नहीं, बस उसकी अपेक्षा से उसको जो कहेंगे द्रव्य निक्षेप। तो नाम निक्षेप यानी आप कोई लड़का हुआ, अभी लड़का तो छोड़ो पोता हुआ और उसका नाम आपने महावीर रखा तो वो नाम निक्षेप हुआ, और स्थापना यानी उसमें उस भगवान की जो हमने स्थापना की है उसको स्थापना निक्षेप कहेंगे। अभी यहां क्या कह रहे हैं देखो, इस तरह ज्ञानी को ही सच्चा नय और सच्चा निक्षेप होता है, वो सच्चा दोनों जगह लगा देना। क्या कहते हैं, नय विषयी है और निक्षेप विषय है। नय ज्ञान ग्रहण किया हो उसे भगवान का नाम निक्षेप लागू पड़ता है, नय ज्ञान ग्रहण किया हो उसे भगवान का नाम निक्षेप लागू पड़ता है। नाम ग्रहण भला है पर किसे, जिसे भाव का भाषण हुआ हो उसे। मैं परमेश्वर समान हूँ ऐसे भाव भासने वाले को स्वभाव का मांगलिक होता है, ऐसे साधक को ही नमो वर्धमाना यह नाम भी मांगलिक है।
वहाँ नमो चाहिए न, ज्यादा सिंपल न। वर्धमाना ये प्राकृत में वर्धमानम कहते हैं, नमो वर्धमाना यह चाहिए, आगे विसर्ग दिया वो भी नहीं चाहिए, यहाँ नहीं होता, चतुर्थी विभक्ति है, वर्धमाना यह होता है, यहाँ नहीं होता, नमो वर्धमाना यह साधा नल का न, और यह के आगे दो बिंदी है वो भी निकाल देना,
विसर्ग जिसको
विसर्ग निकाल देना।
वर्तमान शासन के नायक श्री वर्धमान देव को नमस्कार।
ये विषय और विषय क्या है? तो विषय किसको कहना और विषय किसको कहना दीपाली? तो पूछा क्यों नहीं? विषय किसका होता है? हाँ, ज्ञान का विषय, जिसको जानते हैं वो ज्ञेय को विषय कहते हैं और जो जानने वाला है उसको विषय ही कहते हैं। तो नए तो जानने वाला है ना, ज्ञान है ना, नए तो ज्ञान का भेद है, तो नए को विषय कहा और निक्षेप को विषय कहा,
यानी नए ज्ञेय पदार्थों के बारे में ही कहेगा। तो ज्ञेय कौन कौन से होंगे बोलो बोलो, स्व और पद इसमें सारे आ गए, बहुत अच्छा। हाँ, पूछना है कुछ
नहीं,
आगे बढ़ते हैं। ऐसे श्री वर्धमान देव को प्रवर्तमान तीर्थ के नायक होने के कारण उन्हें सर्वप्रथम प्रणाम करता हूँ, इसलिए नमस्कार करता हूँ क्योंकि वर्तमान शासन में महावीर निमित्त है, चलते यानी प्रवर्तमान तीर्थ के नायक बने के कारण मैं भगवान महावीर को नमस्कार करता हूँ। श्री ऋषभदेव पहले तीर्थंकर थे किंतु वर्तमान में अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर का शासन है, इसलिए सम्यक दर्शन ज्ञान पूर्वक उनको नमस्कार किया है। अज्ञानी साक्षात तीर्थंकर को नमस्कार करे तो उसमें शुभ भाव हो तो पुण्य में तीर्थंकर निमित्त होते हैं। ये क्या कहना चाहते हैं देखो, देखो ये किसकी बात कर रहे हैं? अज्ञानी की। वो क्या कह रहे हैं? अज्ञानी साक्षात तीर्थंकर को नमस्कार करें तो उसमें शुभ भाव हो तो, यानी नमस्कार करते करते उसको उनके प्रति अहोभाव जागृत होता है, उनके स्वरूप की पहचान होती है, उनके स्वरूप के बारे में वह गुणगान करता है, स्तुति करता है, तो उसको शुभ परिणाम होने के कारण पुण्य बंद होगा। लेकिन भगवान के पास जाके मेरे बच्चे को ठीक करो या मैं ऐसा इतना मेरे को पैसा मिलेगा कितना 50,000 तो उसमें से 10,000 आपको चढ़ाऊंगा, क्यों मेरा इतना काम करो, ऐसे कोई भी लौकिक इच्छा वांछा के साथ अगर कोई नमस्कार करता है तो वह भी पुण्य भी नहीं जमा करेगा, वो परिणाम जो है उससे तो पाप ही बंधेगा उसको। इसलिए क्या कहा? अज्ञानी, अज्ञानी तो दोनों प्रकार के ना, कहाँ गए थे साहब हम तो फला फला फला, अभी नाम लेना तो ठीक नहीं लगता है, लेकिन कहीं आप समझ लो जहां अपन नहीं जाते वहां कहाँ जाते नहीं हम मालूम नहीं, हमने तुम जाती नहीं इसलिए आपको मालूम नहीं, सबका मालिक एक, नहीं तो जाके सब सर के बाल हटा के आते, क्यों उधर जाएगा तो हमारा कुछ मन में जो इच्छा वांछा होगी वो पूरी होती है, अपने ऊपर का संकट टल जाता है, ऐसा करके वहां जाते हैं घूम फिर के आते हैं, और बाकी तो और बातें बहुत है, तो उससे तो शुभ भाव भी नहीं है, वो तो पहले तो तीर्थंकर है नहीं है, वो तो अन्य है, उनको तो अदेव और कुदेव में डाल देना। लेकिन जो साक्षात तीर्थंकर है उसको भी कुछ इच्छा वांछा के साथ लौकिक कोई फायदा होवे ऐसी बात करते हैं तो कहते हैं उसे शुभ परिणाम भी नहीं है और उसे शुभ बंध भी नहीं होगा, पुण्य बंध भी नहीं होगा। देखो फिर से क्या कहते हैं? अज्ञानी साक्षात तीर्थंकर को नमस्कार करे तो उसमें शुभ भाव हो तो पुण्य में तीर्थंकर निमित्त होते हैं, किंतु यहाँ धर्म की बात है, पुण्य से अथवा व्यवहार से निश्चय होगा, इस प्रकार राग में अटकी बुद्धि वाले को भगवान तीर्थ रूप निमित्त नहीं होते, क्योंकि पराश्रय की दृष्टि वाले को मैं स्वयं तीर्थ हूँ तीरने वाला हूँ ऐसा निर्णय नहीं है, इसलिए भगवान निमित्त नहीं कहलाते। उसके लिए सॉरी, यानी जिसने अपना स्वरूप भी नहीं पहचाना है उसके लिए भगवान भी निमित्त नहीं है ऐसा कहने में आता है। श्री अमृत चंद्राचार्य की टीका अद्भुत है, इसमें 14 पूर्व का रहस्य है। भगवान महावीर तीर्थ के नाथ है, नायक है, आत्मा का अन्य कोई नायक नहीं होता। ये तीर्थ का अर्थ मैंने बताया था, किसको याद है नलिन भाई? हाँ क्या क्या पूछा आपने? हाँ भगवान महावीर तीर्थ के नाथ है, नायक है, ये तो उपचार से ऐसा कहने में आता है, लेकिन मूल बात क्या है? आत्मा का अन्य कोई नायक नहीं होता, स्वयं प्रभुता से भरा हुआ है, किंतु वह अन्य को प्रभुता देवे ऐसा उसका स्वभाव नहीं है, दृष्टि में कोई अन्य नायक नहीं है, किंतु यहाँ पर्याय में निमित्त निमित्तिक संबंध का ज्ञान कराते हैं। साधु, आरिका, श्रावक, श्राविका, इस प्रकार चार संघ स्वयं तीर्थे है। पहले तो योगियों को कहा था ना, तो ये बाकी अन्य भी उसमें इंक्लूडेड है, क्योंकि वहां बताया था चौथे और पांचवें पुनः स्थानवर्ती जीवों को भी उसमें गौण रूप से लिया है। तो ये क्या कहते हैं? जो स्वयं तीर्थे है, कौन कौन तीर्थे हैं? पहले गुणस्थान वाला नहीं, चौथी से आगे, क्योंकि जिन्होंने स्वयं का अनुभव किया है वही वही उन्हीं जीवों को वो भगवान निमित्त होते हैं। जिन्हें तिरना आता है उसे तिरने में पानी निमित्त होता है। मैंने कहा था इसमें आया है करके, हाँ जी नहीं मैंने बताया था, ये इसमें से ही पढ़कर बताया था, लेकिन मैं याद नहीं कर पा रहा था कि कहाँ मैंने पढ़ाया। क्या कहते हैं देखो देखो कि जिन्हें तिरना आता है उसे तिरने में पानी निमित्त होता है। ये हिंदी शब्द तो तैरना आता है चाहिए, लेकिन अभी ऐसा उन्होंने तिरना कर दिया। इस प्रकार भावलिंगी साधु आरिका श्रावक और श्राविका को निमित्त रूप से वे तारने वाले तारक है, वे यानी भगवान महावीर, इसलिए मैं उन्हें नमस्कार करता हूँ। निश्चय क्या है, व्यवहार क्या है, निमित्त क्या है, महावीर भगवान कैसे, महावीर हुआ है वो महावीर करना, और उन्हें क्यों नमस्कार किया है, यहाँ यह सब कथन किया गया है। प्रवर्तमान तीर्थ बने के कारण भगवान महावीर भगवान को प्रथम नमस्कार किया है, इसके पश्चात अन्य को नमस्कार करते हैं। तीर्थंकरों तथा सिद्धों की सत्ता विशुद्ध हो गई है, मलिनता नहीं रही। जैसे सोने को अग्नि से तपाते हैं, आंच देते हैं और शुद्ध सोने को बाहर निकालते हैं, वैसे ही उत्तम स्वर्ण समान शुद्ध दर्शन ज्ञान स्वभाव को उन्होंने प्राप्त किया है। ध्यान अग्नि से पूर्ण शुद्ध दशा प्रकट करके बाहर निकाला है, ऐसे महावीर के सिवाय भूतकाल के तीर्थंकरों को तथा अनंत काल में जो जो सिद्ध हुए हैं उन सभी को नमस्कार करते हैं। देखो यह प्रवचन सार दिव्य ध्वनि का सार है, सभी भगवान मेरे नजर में है, इस प्रकार उन्हें उपस्थित करते हैं। वे सभी शुद्ध दर्शन ज्ञान स्वरूप को प्राप्त हुए हैं, इसलिए उन्हें नमस्कार करते हैं। जो अभी हम मंगलाचरण में पांच श्लोक जो बोलते हैं ना, उसी का अर्थ यहाँ चल रहा है। ते सर्वने साथे तथा प्रत्येकने प्रत्येकने, ये बात है ना। अब आगे कहते हैं, पांच आचार सहित शुद्धोपयोग भूमिका प्राप्त किए हुए हैं, किए हुए श्रमण को नमस्कार है। ये पांच आचार कौन से है मालूम है ना सुशीला बेन, बोलो बोलो। पहला कौन सा, क्रम बराबर नहीं बताया, कोई बात अभी पढ़ के भी बताया लेकिन बहुत अच्छा बताया। हाँ नहीं, हाँ देखो, पांच आचार से शुद्धोपयोग भूमिका प्राप्त किए हुए श्रवणों को नमस्कार, तथा आचार्य की जिन्होंने परम शुद्ध भूमिका प्राप्त की है उन्हें नमस्कार। अपने ज्ञान स्वभाव में रहते हैं वह ज्ञानाचार, निशंक हुए हैं वह दर्शनाचार, दर्शन यानी श्रद्धा गुण की अपेक्षा करें। वो ज्ञान दर्शन वाला जो है सामान्य अवलोकन, वो दर्शन गुण की बात नहीं है, यहाँ श्रद्धा गुण की बात है। निशंक हुए हैं वह दर्शनाचार, स्वरूप की रमणता का आचार यानी स्वरूप में एकाग्र जो होता होते हैं उसको कहा है चारित्राचार, इच्छा का निरोध होकर ध्यान में रमते हैं वह तपाचार, स्व सामर्थ्य रूप से वीर्य यानी स्वभाव में ही रोका है वह वीर्याचार। ऐसे पांच आचार सहित है, ऐसे आचार्य उपाध्याय और साधुओं को नमस्कार करते हैं। पांच आचार सहित उन सभी ने परम शुद्ध उपयोग भूमिका को प्राप्त किया है, अन्य मत के साधु साधु की श्रेणी में नहीं आते। कल कहाँ गए आपने, अश्रुबेन नहीं है ना, तो कल बात निकली थे ना, कल या परसों कभी। देखो क्या कहा, अन्य मत के साधु साधु के श्रेणी में नहीं आते तो अन्य मत के भगवान कैसे आएंगे? अपने भगवान की श्रेणी में नहीं, एक लेवल में, एक स्टैंडर्ड के। हाँ जी, हाँ एक है, हाँ बराबर। सर्वज्ञ द्वारा कहे गए साधु कैसे होते हैं? तो अब ये सर्वज्ञ भगवान ने जो साधु का स्वरूप बताया है वो कैसा है? तो कहते परम शुद्ध उपयोग की भूमिका को प्राप्त किया है। देह के क्रिया तो जड़ की है, उसे आत्मा प्राप्त नहीं कर सकता, और महाव्रतादि के परिणाम पुण्य है। शुभाशुभ उपयोग छोड़कर स्वभाव की श्रद्धा ज्ञान लीनता से जिन्होंने शुद्धोपयोग दशा को प्राप्त किया है उन्हें जैन दर्शन में आचार्य उपाध्याय और साधु कहा है। पुण्य और मन का संबंध छुटकर चिदानंद भगवान आत्मा का संबंध हुआ है, जिससे आत्मा का शुद्ध व्यापार यानी परिणमन, व्यापार यानी वो अपन लौकिक में व्यापार करना वो नहीं है। क्या कहा कि पुण्य और मन का संबंध छूटकर चिदानंद भगवान आत्मा का संबंध हुआ है, जिससे आत्मा का शुद्ध व्यापार प्रकट किया है, ऐसे साधुओं को ही यहाँ नमस्कार किया है। देखो क्या बताते हैं, फिर से पहले तो साधु किसे कहना वो बता रहे हैं। कहते कि परम शुद्ध उपयोग की भूमिका को प्राप्त किया है, यानी उनके शुद्धोपयोग इतना अधिक प्रमाण में है, प्रचुर अतीन्द्रिय आनंद का जिन्हें वेदन है। वो प्रचुर अतीन्द्रिय आनंद का वेदन कब और किसे होगा? तो कहते हैं जिसने तीन कषाय की चौकड़ी के अभाव किया है, यानी अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान और प्रत्याख्यान क्रोधमान माया लोग, ये जो कषायों की तीन चौकड़ी है उसका उन्होंने अभाव करके जो अपने स्वरूप में अधिक अधिक एकाग्रता की है, इसलिए कहते हैं वे परम शुद्ध उपयोग की भूमिका को उन्होंने प्राप्त किया है। और क्या कहते हैं, देह की क्रिया तो जड़ की है, ऐसी जिनकी पूर्णतः खात्री है और उसे आत्मा प्राप्त नहीं कर सकता, और महाव्रतादि के परिणाम पुण्य है ऐसा जो मानते हैं और उस तरह आचरण भी करते हैं। तो हमने तो ऐसा ही समझ रखा है कि जो 28 मूल गुण पालन करते हैं वे मुनि हैं, जो नग्न रहते हैं वे मुनि हैं, ये जो बाह्य आचरण है वह तो पुण्य परिणाम है, वो पुण्य परिणाम से उन्हें मुनि पद नहीं दिया जाता। मुनि पद तो उनको जब प्राप्त होता है कि जब उनके अंतरंग में शुद्धता वर्तती है, जब इस प्रकार की शुद्धता होती है तो बाह्य में 28 मूल गुण पालन करने के परिणाम सहज आते हैं उनके हाल में आया। लेकिन जिनके अंतरंग में शुद्धोपयोग है नहीं, बाहर में ऐसा ही क्रिया होती है, तो वो जड़ की क्रिया है। क्या कहा देखो, देह की क्रिया तो जड़ की है, जड़ यानी अचेतन पुद्गल की है ये, और कहते हैं उसे आत्मा प्राप्त नहीं कर सकता, यानी जड़ की क्रिया तो आत्मा नहीं कर सकता, और जो महाव्रता जी के परिणाम है वे पुण्य है। शुभाशुभ उपयोग छोड़कर स्वभाव की श्रद्धा ज्ञान लीनता से जिन्होंने शुद्धोपयोग दशा को प्राप्त किया है उन्हें जैन दर्शन में आचार्य उपाध्याय और साधु कहा है। ख्याल में आया, देखो फिर से मैं कहता हूँ समझना कि यह जो मुनिराज होते हैं वह तो 24 घंटा अपने शुद्धोपयोग में यानी अपने आत्मा में रमणता नहीं कर पाते, तब उनके कभी कभी यानी एक अंतर मुहूर्त में शुद्धोपयोग शुभोपयोग आ जाता है शुद्धोपयोग से हटकर, ख्याल में, और उनको 28 मूल गुण पालन करने के परिणाम होते हैं। लेकिन 28 मूल गुण पालन करना यह मुनिपना नहीं, क्योंकि जो स्वभाव में जो रमणता होने से पर्याय में भी जो शुद्धता प्राप्त हुई है वह वंदनीय है, वही आदरणीय है। लेकिन बात तो ऐसी है कि हम मुनियों को देखते हैं तो उनके अंतरंग में कौन से परिणाम चल रहे हैं, उनमें कितनी शुद्धि प्राप्त हुई है, यह हमें कैसा पता लगे। तो इसलिए ऐसा भी शास्त्र में दिया हुआ है कि जो 28 मूल गुण यथोचित पालन करते हैं, यानी यथा उचित या आगमोचित आगमानुसार जो पालन करते हैं, उन्हें वंदन करने में कोई हर्जा नहीं है। वे वंदनीय है, हर्जा तो छोड़ो, वे आदर करने योग्य है। कल में क्योंकि किसी भी व्यक्ति को देखकर, किसी भी जीव को देखकर, वह अंतरंग में उसकी कितनी शुद्धि है वो कैसा कौन जान सकता है। इसलिए लेकिन मुनि पद किसमें है, तो उनमें वर्तती जो वितरागता है वह मुनि पद की निशानी है, और वह समझने के लिए उनके 28 मूल गुण जो है वह हमें, मतलब उसके ऊपर से हम उनको वंदन करना कि भाई उनके क्या कहते हैं आहार आदि की व्यवस्था जो होती है वह भी करने में कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ देखो मुनि सर्वज्ञ द्वारा कहे हुए साधु कैसे होते उसकी बात चल रही है अभी नीचे से थर्ड लाइन। पुण्य और मन का संबंध छूटकर चिदानंद भगवान का आत्मा का संबंध हुआ है, जिससे आत्मा का शुद्ध व्यापार प्रकट किया है, ऐसे साधुओं को ही यहाँ नमस्कार किया है। अभी जो अन्य जो है वो साधु है क्या नहीं, अरे भाई उनमें तो आत्मानुभव ही नहीं, चतुर्थ गुणस्थान की भी यहाँ कोई खातरी नहीं है, वे कैसे साधु ऐसा जो हम उन्हें वंदन करें। कल में आए कहते हैं श्रमण शुद्धोपयोग को साधते हैं किंतु महाव्रतादि के राग को नहीं साधते। किसकी बात चल रही है, श्रमणों की, यानी मुनिराज जो आचार्य उपाध्याय साधु जो है उनको एक शब्द में श्रवण कहा है। श्री अरहंत को परमेश्वरता प्रकट हुई है, सिद्ध पूर्ण शुद्ध सत्ता वाले हैं। अरहंतों की भी बात बताई और सिद्धों की भी बात बताई। संतों को पूर्ण शुद्ध सत्ता प्रकट नहीं हुई है किंतु उन्होंने शुद्ध उपयोग भूमिका प्रकट की है। उन्हें 28 मूल गुण गुरस्व चाहिए, प्राप्त करना नहीं रहता अपितु 28 मूल गुण, यहाँ पर भी गुरस्व चाहिए, क्या कहते फिर से, उन्हें 28 मूल गुण प्राप्त करना नहीं रहता अपितु 28 मूल गुण के पालन का भाव सहज आ जाता है। निश्चय से वे राग का पालन नहीं करते, शुभ राग तो बलपूर्वक आ जाता है। पूर्व में कहा है कि सराग चारित्र क्रम में आ गया है, राग को लाए वह तो क्या लिखा बे, चश्मा बिना चश्मा लगा के पढ़ सकते क्या क्या कहा, देखो देखो कि क्या कहा उन्होंने, राग को लाए वह तो मिथ्या दृष्टि बना है, क्यों कि मैं शुभ राग कर सकता हूँ और शुभ राग किए बिना तो क्या चलेगा, नहीं तो क्या हम अशुभ राग करें, ऐसा लोग समझते हैं। यहाँ तो पहले तो कि मान्यता में जो गड़बड़ी है उस मान्यता को हमें सुधारना है, वो जाके किसी साधु वाधु को सुधारना नहीं है, तेरे स्वयं की मान्यता को तू देख, ख्याल में आया ना, क्योंकि तू पर का कुछ कर ही नहीं सकता है, किसी को अन्य को क्या तेरा अधिकार पहुंचता है कि उसको सुधारना नहीं सुधारना, तू सुधार ही नहीं सकता है, पहली बात तो ये समझ। तो अपनी मान्यता में कोई खोट होवे तो उसको तू सुधार, इसलिए क्या कहते हैं, जो राग को लाए ये अन्य को सुधारने का राग भी तो है ना, तो वो क्या कहते, वह मिथ्या दृष्टिपना है। अन्य की तो बात छोड़ो, जो मुनिराज स्वयं ऐसा मानते हैं कि राग करते करते वितरागता आएगी, यानी क्या हो गया कि राग करना अच्छा है और वही एक वितरागता प्राप्त करने के एक मार्ग है। ये भक्ति मार्ग है ना बहन, किधर गया वो भक्ति मार्ग वाली, कौन गई यहाँ से, वो सुबह में आते हैं। ये राग है ना, भक्ति करेगा किसकी, स्वकीय पर की, तो पर की करता है तो वह तो राग है, और उससे वितरागता हो जाए, कतई ये पॉसिबल नहीं है। यहाँ तो लोगों को मुनिपने की खबर भी नहीं है, पांच महाव्रत को मुनि नहीं लाते, किंतु छठवें गुणस्थान में क्रम में ऐसा राग आ जाता है, मैं इस प्रकार की दया का राग लाऊं ऐसा मानना वह तो मिथ्या दृष्टि पना है। हम तो मुनि की बात छोड़ो, हम अपनी बात देखें क्या बहन, तो अभी वहाँ ऐसी मतलब बातें चल रही थी कि प्राणियों को ये दया पालते ना, तो उनको घास खिलाना क्या नहीं खिलाना, कोई मरता हुआ प्राणी हो तो उसको घास खिलाना क्या नहीं खिलाना। एक जन बोलता है तुम पांच इंद्रिय वाले जीव को बचाने के लिए एक इंद्रिय को तुम मारता है, और दूसरा कहता है नहीं ऐसा तो परिणाम आना ही चाहिए, ऐसे तो आएगा ही, तो यहां क्या कहा। देखो देखो, इस प्रकार की दया का राग लाऊं ऐसा मानना मिथ्या दृष्टिकोण है। पहले ये नक्की करो फिर तुमको क्या करने का है, क्या होगा, तू कर भी नहीं सकता है, जिस समय जो होगा सो होगा। पहले ये तो समझ कि तू पर को जिला सकता है क्या, पर को मार सकता है क्या, पहले जो मूल श्रद्धान में जो गड़बड़ी है उसको तो हम ऐसे के ऐसे शाबुत रखना चाहते हैं, और बाकी क्रिया में इधर उधर फेरफार ऐसा करने का कैसा करने का चल रहा है। तो पर इसमें आया था ना नियम सार में, फोन करे गुरुदेव ने कहा था, यानी पहले नक्की तो कर कि तू कर सकता है कि नहीं, फिर क्या करना नहीं करना उसकी बात सोच। पांच महाव्रत को मुनि वो हो गया, अज्ञानी उनमें फेरफार करना मानता है किंतु इसलिए वस्तु स्वरूप नहीं बदलता, यानी उसकी जो भी मान्यता हो वो हो, लेकिन उसकी मान्यता के अनुसार वस्तु स्वरूप नहीं बदलता। तीर्थंकर परमात्मा को मानने वाले साधक कैसे होते हैं, वे शुद्ध उपयोग को साधते हैं, किंतु यहाँ साधक यानी यहाँ मुनियों की अपेक्षा से बात की है, क्या कहते हैं, वे शुद्ध उपयोग को साधते हैं किंतु 28 मूल गुण पालने को नहीं साधते। शुभ राग आ जाता है किंतु उसे पुण्य और जहर मानते हैं, कौन, मुनिराज स्वयं, के ऐसे जो परिणाम आते हैं कौन से परिणाम, उपदेश देने नहीं, उपदेश देने के परिणाम, शास्त्र लिखने के परिणाम, ये कैसे शुद्धोपयोग के है ना परिणाम, हाँ कैसे हैं, शुभ है ना, तो वैसे शुभ परिणाम को भी वो जहर मानते हैं कि क्यों मैं अपने स्वरूप में एकाग्र नहीं हो पा रहा हूं, अरे यहां तक मैं आया हूं अभी क्यों न मैं श्रेणी चढ़ के ऊपर मेरा कल्याण कर लो, लेकिन अभी कमजोरी है, अंतरंग में स्थिरता करने की उतनी योग्यता नहीं है, इसलिए बार बार स्वरूप से बाहर आकर, यानी ऐसा मत समझना स्वरूप एक अलग बात है और यह उसमें से बाहर आता है फिर उसमें से अंदर बेल बजा के जाता है, ऐसा नहीं समझना, ये तो कथन पद्धति है, क्योंकि एक अंदर रहने वाला कोई अलग है बाहर आने वाला कोई, ऐसी बात है नहीं है, लेकिन ये कहते हैं कि शुभ राग जो आता है तो उस समय वह जीव अपने शुद्धोपयोग में अधिक काल नहीं ठहरता है, और शुभ राग आने से वो 28 मूल गुण पालन करने के या शास्त्र लिखने के या किसी को उपदेश देने के ऐसे परिणाम सहज आते हैं। और ऐसे पुण्य परिणाम को वह जहर मानते। देखो आपने अगर समझदार पढ़ा है तो उसमें तो यहाँ मुनिराजों के ऐसे शुभराज को विषकुंभ कहा है। कुंभ यानी ऐसा बड़ा जार जो होता है ना, आप लोग जयपुर गए होंगे ना, हाँ वो बड़ा बड़ा रंजन जैसा मतलब ऐसे वो होता है कुंभ, तो उसमें क्या रखा है विष, ये राग ऐसा है कहते उनको, ऐसा अंदर से होता है। कैसा होता है, अभी थोड़े दिन में गर्मी आ जाएगी और आप सेठिया लोग हैं तो घर में बैठेंगे तो एसी में बैठेंगे, तो बाहर आते ही कैसा लगता है, क्या गर्मी क्या गर्मी है, और फिर अंदर एसी में जाओ तो हाँ बहुत अच्छा बहुत। ऐसा जब ये शुद्धोपयोग में होते हैं तब तो उनको ऐसा ही अतीन्द्रिय आनंद का वेदन होता है, और जैसे उससे बाहर निकले तो आकुलता 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 होती है, तो वो भी उनको गर्मी महसूस होती है, फिर एसी में मैंने अपने शुद्धोपयोग में जाना चाहते ख्याल में आया। तो कहते हैं कि शुभराग आ जाता है किंतु उसे पुण्य और जहर मानते हैं। मूढ़ जीव शुभ राग को धर्म मानते हैं, इसलिए वे संसार में रखड़ते हैं। यह प्रवचन सार 2000 वर्ष वह चाहिए बने वर्ष पहले लिखा गया था और इसकी टीका 1000 वर्ष पहले हुई है। देखो यहाँ मुनि की बात की है। शुद्धोपयोग चौथे पांचवें गुणस्थान में आता है किंतु परम शुद्धोपयोग मुनि को आता है। ऐसी भूमिका सामान्य रूप से प्राप्त की है और विशेष रूप से आचार्य उपाध्याय और साधुओं के विशेषों से भेद वाले हैं, यानी उनमें जो विशेषता जो जुदी जुदी है इसलिए उनमें आचार्यपना उपाध्यायपना और साधुपना ऐसा अलग अलग ये बताया। वैसे सभी तो तीन कषाय के चोपड़ी के अभाव पूर्वक सकल चारित्र वाले ही है। उनको प्रणाम करता हूं। इस प्रकार किधर गया, इस प्रकार अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय और साधु कैसे होते हैं उनका भान करके, भान यानी यहाँ ज्ञान करके नमस्कार करते हैं। मेरी पहचान से उनकी पहचान है। जो शुभराग आया है वह व्यवहार से नमस्कार कहलाता है। सभी पंच परमेष्ठी भगवंतों को वर्तमान कालगम्य निकट करके नमस्कार, यानी जो अभी सभी पंच परमेष्ठी है ना, यानी जो भूतकाल के जो हो गए हैं और जो भविष्य में होंगे उनको क्या कहते हैं, वर्तमान में ही वे साक्षात अपने सामने हैं, तो वर्तमान कालगम्य निकट करके ते सर्वने साथे तथा प्रत्ये, सबको साथ में और अलग अलग, और उनको वर्तमान में अभी वो मौजूद है ऐसा समझकर, इसके पश्चात इन्हीं पंच परमेष्ठियों को उन उन व्यक्ति में व्याप्त होने वाले अर्थात अरहंत की पर्याय में व्याप्त होने वाले अरहंत को, सिद्ध की पर्याय में व्याप्त होने वाले सिद्ध को, आचार्य की पर्याय में व्याप्त होने वाले आचार्य को, उपाध्याय की पर्याय में व्याप्त होने वाले उपाध्याय को, साधु की पर्याय में व्याप्त होने वाले साधु को, इस प्रकार सभी को नमस्कार करते हैं। वर्तमान में इस, ये तो समझ में आवे ऐसी बात है आगे, वर्तमान में इस क्षेत्र में तीर्थंकरों का अभाव, आ हो गया वो अ करना, अभाव है और महाविदय क्षेत्र में साक्षात तीर्थंकर विराजमान है, इसलिए मनुष्य क्षेत्र में प्रवर्तते तीर्थ नायको सहित वर्तमान काल गम्य करता हूँ। भूतकाल में अनंतो हुए उन सभी को काल गम्य वर्तमान करते हैं और वर्तमान काल गोचर करते हैं। इस प्रकार सम्यक प्रकार सहित भान पूर्वक भक्ति का विकल्प आता है। महाविदय क्षेत्र में वर्तते श्री सीमंदर आदि तीर्थंकर मानो कि वे सभी पंच परमेष्ठी भगवान वर्तमान काल में ही मेरे सामने वर्तते हो, इस प्रकार अत्यंत भावना पूर्वक युगपद चिंतवन करके युगपद अर्थात समुदाय रूप से सभी को एक साथ नमस्कार करता हूँ और प्रत्येक सिद्ध व अरहंत को व्यक्तिगत अर्थात विशेष रूप से सम्मान करता हूँ, आराधन करता हूँ। जैसे विवाह के समस्त लड़के लड़कियों व विवाह में समस्त लड़के लड़कियों व रिश्तेदारों को बुलाते हैं, वैसे यहाँ अपनी इष्ट सम्यक आराधना के बहुमान के लिए स्वयं सभी पंच परमेष्ठियों को बुलाते हैं, उनका स्मरण करते हैं। इस प्रकार यहाँ सभी को सामान्य रूप से और व्यक्तिगत यानी विशेष रूप से नमस्कार किया है। मोक्ष रूपी लक्ष्मी चारित्रवंत मुनि के कंठ में हार डालती है। कुंदकुंद आचार्य स्वयं मुनि है और चारित्र ग्रहण करता हूँ ऐसा वर्णन करते हैं। बाह्य से नग्न दशा है, जिस चारित्र को प्रकट करना चाहते हैं वह त्रिकाली अंतर में सत्ता रूप से विद्यमान है, उसका आश्रय करके चारित्र प्रकट करना चाहते हैं, इस विधि से कथन करते हैं। देखो क्या कह रहे हैं, वे स्वयं तो चारित्रवंत है फिर भी पूर्ण चारित्र अभी प्राप्त नहीं हुआ है, इसलिए कह रहे हैं वो चारित्र प्रकट करना चाहते हैं। और वो कैसा होगा, तो जो त्रिकाली ऐसा जो स्वयं का स्वरूप भगवान आत्मा जो है जो हमेशा विद्यमान है हमेशा रहता ही है, ऐसे त्रिकाली भगवान आत्मा का आश्रय लेकर वह पूर्ण चारित्र दशा प्रकट करना चाहते हैं। आगे परम पवित्र पूर्ण आनंद दशा रूप मोक्ष का कारण चारित्र है। आत्मा आनंद कंद है, उसका भान करके जो स्थिरता हुई वह चारित्र है। आचार्य भगवान सभी अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधुओं को नमस्कार करते हैं। आत्मा आनंद कंद निर्मलानंद स्वरूप है, ऐसा भाव जिन्होंने पर्याय में प्रकट किया है उन सभी को ध्यान में हाजिर रखा है। जैसे अपने घर में कोई शादी हो तो हम सभी रिश्तेदारों को बुलाते हैं क्योंकि मंडप की शोभा बढ़नी है ना, तो वैसे यहाँ पर जब इन्हें मंगलाचरण करना है अपना कार्य निभाना है तो उनको सभी वीतरागी पंच परमेष्ठी जो है वो याद आते हैं। तो कैसी वो मतलब कुंदकुंद आचार्य भगवान के मन में क्या क्या बात हुई होनी चाहिए, कितने कषायों की मंदता होगी। अरे हमें तो 9 बार नमोकार बोलना हो तो यहाँ गटपट हो जाती है, ये इसको काय को बोले, ये बहुत आस्ते बोलता है, जो जल्दी जल्दी बोले ऐसे को देना चाहिए ना, ऐसा मन में आता है कि नहीं? नहीं आता। और अभी तो ऐसा हो गया कि हाँ ऐसा है क्या, हंसते हंसते बोलने से और एकदम गाड़ी एकदम फर्स्ट गियर में चला रहे। नहीं ऐसा कुछ नहीं, ये तो भाई हम भी तो उसी गाड़ी में बैठे हुए थे कुछ जमाने पहले, ऐसा नहीं कि आपको देख के हमको ऐसा कुछ मन में आता है। ये तो भाई ऐसे जीव के परिणाम तो होते ही है। ये मैं वही बताना चाहता हूँ, कुंदकुंद आचार्य देव ने ऐसी बात उठाई है और ये 5 गाथाओं द्वारा मंगलाचरण इस ढंग से किया है कि कितनी बार उसका वर्णन करे और कम लगता है। आचार्य कहते हैं कि मैं पूर्ण पद को प्राप्त करने के लिए तैयार हुआ हूँ। क्या कहते, देखो स्वयं कुंदकुंद आचार्य कहते कि मैं पूर्ण पद को यानी मोक्ष पद को प्राप्त करने के लिए तैयार हुआ हूँ, मेरा स्वभाव विकार के कारण नहीं है। यानी क्या प्रतिभा थी, मेरा स्वभाव विकार के कारण नहीं, शुभ राग करूं तो मेरा कल्याण होगा ऐसा नहीं, वो विकार के कारण मेरा स्वभाव नहीं है, स्वभाव के लिए तो कारण ही कोई नहीं होता है। मैं त्रिकाली शुद्ध चिदानंद हूँ ऐसा अवलंबन लेकर निर्मल रमणता प्रकट की है, मोक्ष लक्ष्मी धारण, मोक्ष लक्ष्मी चारित्र धारण करने वाले को वरण करती है, यानी उसी को मोक्ष प्राप्त होता है कि जो अपने स्वरूप में एकाग्र हो जाते हैं। मोक्ष लक्ष्मी का स्वयंवर मंडप लगाया है जिसमें सभी भगवान को एकत्रित किया है। देह से मेरा आत्मा पृथक है, मैं परमानंद साधने को तैयार हुआ हूँ। मोक्ष रूपी लक्ष्मी चारित्रवंत को वरण करती है, स्वरूप में रमण करना वह चारित्र है। चारित्र किसको कहना है? स्वरूप में जो रमणता है या स्थिरता है उसको चारित्र कहते हैं। और हम चारित्र किसको मानते हैं? क्या जोर से बोलो ना। बाह्य व्रत आदि जो करते हैं उसको, अरे वो तो बहुत चारित्रवान है। यहाँ क्या कहते हैं? स्वरूप में रमण करना यानी स्वरूप में स्थिरता करना, स्वरूप में स्थित हो जाना, एकाग्र हो जाना, ध्यान मग्न हो जाना, उसको ही चारित्र कहा है। मोक्ष रूपी लक्ष्मी चारित्र के कंठ में हार डालती है, अंदर ओकषाय स्थिरता है और बाह्य दिगंबर नग्न दशा है। अभ्यंतर पूर्ण शांति प्रकट करना चाहते हैं, जो अंतर में है वह बाहर आता है। जैसे लेंडी पीपर के प्रत्येक दाने में 64 पुटी तिखास है, 64 पुटी अर्थात 64 पैसा अर्थात 16 आने अर्थात पूर्ण, लेंडी पीपर के दाने दाने में पूर्ण तिखास और हरापन जो शक्ति रूप से है वह प्रकट होता है। प्राप्त की प्राप्ति होती है, स्वभाव की सामर्थ्य सत्ता में से आती है। सत्ता इंद्रसेन जो उसमें स्वरूप में विद्यमान है, सत्ता स्वरूप है, उसी में से वह स्वभाव का सामर्थ्य प्रकट होता है। वैसे ही प्रत्येक आत्मा पूर्ण लक्ष्मी ज्ञान दर्शन आनंद से पूर्ण है। वर्तमान में ही अल्पज्ञता और विकार रहित ध्रुव स्वभाव है, ऐसी अंदर सन्मुखता का भान हुआ है, उपरांत उसमें लीन होना वह चारित्र है। हे परमेश जी भगवंतो, हमें हमारा भरोसा है तथा आपको साथ में रखा है, इसलिए मैं मोक्ष लक्ष्मी को निश्चित ही वरूंगा। इस महोत्सव में कुंदकुंदाचार्य ने सभी भगवंतों को बुलाया है। जैसे विवाह में बड़े लोगों को साथ में लाते हैं, यदि कन्या का पिता वो और पिता रुपये में जरा अंतर रखना चाहिए।
उल्टा था।
हाँ, पहले के जमाने में अलग बात है। क्या कहते हैं? यदि कन्या का पिता रुपए मांगे और इनकार करे तो बड़े लोग बीच में पड़कर समय पर लग्न करा देते हैं। यानी क्या कहते हैं कि किसी पिता को पैसा मांगे और दे नहीं पाए तो अन्य लोग आके उसकी पूर्ति कर देते हैं। हमें भी प्रतिष्ठित अर्थात इज्जत वालों को साथ में लाना चाहिए, नहीं तो कन्या नहीं जाएगी। वैसे ही प्रभु, हमने भी स्वयंवर मंडप लगाया है, आत्मा में पूर्ण शुद्धता शक्ति विद्यमान है, उसकी व्यक्तता पूर्ण हुई वह मोक्ष है। मोक्ष लक्ष्मी का साधन चारित्र है, जो चारित्र ग्रहण करता है उसे मोक्ष लक्ष्मी वरण किए बिना नहीं रहती। हे भगवान, मोक्ष लक्ष्मी मुझे वरण करने वाली है, हमें हमारा भरोसा है कि मैं पूर्ण दिशा को पाऊंगा और मोक्ष प्राप्त करूंगा। हमने पंच परमेश जी को साथ में रखा है, ये बड़े बड़े लोगों को लाया बोल। इसलिए मोक्ष लक्ष्मी जरूर वरण करेगी। इस प्रकार जिन्होंने मोक्ष लक्ष्मी को प्राप्त किया है और प्राप्त करने वाले हैं, उन सभी को हाजिर रखा है। मोक्ष लक्ष्मी मेरा वरण करने वाली है, जो निश्चित ही वरण करेगी। अंतर को निकाल दिया, अंतर को निकाल दिया है। यदि मैं बाद में गिर जाऊंगा तो कर्म का उदय आ जाएगा, तो ये बातें बिल्कुल नहीं होगी। मैं तो मोक्ष लक्ष्मी को वरण करने वाला हूँ। मेरे चारित्र के तेज की शोभा द्वारा मोक्ष लक्ष्मी पीछे हटने वाली नहीं है। ऐसे अप्रतिहत भाव को यहाँ वर्णन करते हैं। अप्रतिहत यानी जो बीच में टूटता है, खंडित होता है, ऐसा नहीं, अखंडित रहने वाला ऐसा भाव। देखो देखो, हमेशा स्वामी जी ऐसी बात कहते थे कि सम्यक दर्शन से पढ़ने वाली बात ही मत करना। ऐसा पुरुषार्थ जागृत करो कि फिर पढ़ने का कभी नाम ही नहीं आ जाए। हमेशा ऐसा कहते हैं, पढ़ने की बात ही नहीं करना। तो वो अप्रतिहत भाव का यहाँ वर्णन करते हैं। ऐसे निमित्तों को साक्षी रखा है, अनंत सिद्ध और अनंत आदि हाजिर हो और मोक्ष लक्ष्मी नहीं मिले, ऐसा नहीं हो सकता। मैं तो शक्तिवान हूँ, उसके प्रयोग से मोक्ष लक्ष्मी जरूर वरेगी। तब फिर कर्म कहाँ गए? कर्म कर्म के घर गए। स्वयं अपने से है किंतु अनंत पर से नहीं, ऐसा निर्णय किए बिना अस्थि सिद्ध नहीं होती। अनंत पर पदार्थों की अस्थि स्वयं उनसे है किंतु मेरे से नहीं। मैं मेरे से अस्थि रूप हूँ और पर से नास्ति रूप हूँ। इस प्रकार निर्णय कर जिस शांति आनंद को प्रकट करना चाहता है वह अंतर में विद्यमान है, बाहर में नहीं। क्या कहते, जो तेरे में अंतरंग में शांति सुख आदि जो है वो कहीं बाहर से आवे, ऐसी बात नहीं है। जो कोई शांति है, सुख है, समाधान है, निराकुलता है, अतीन्द्र सुख है, वह तो अपने स्वयं में है। वो कहीं से बाहर से लाकर जोड़ नहीं सकते, न ला सकते दोनों बात। इसलिए क्या कहते हैं, तू कर्म की क्यों चिंता करता है? कर्म तो अपने अपने घर में यानी अपने अपने स्वचतुष्टय में है। स्वचतुष्टय यानी क्या मालूम है भविता? स्वचतुष्टय यानी क्या याद नहीं? कोई बात नहीं, और कौन जानता है? आप जानो छो, बोलो। अच्छा, इन्हें शू कहवा है? स्वचतुष्टय अने पर चतुष्टय। प्रति बताइए, आप जानते हैं स्वचतुष्टय क्या है? कोई बात, हाँ अभी कौन बताएगा? हाँ पुष्पा बहन, आज हाथ उठाया ऊपर, बहुत बढ़िया। हाँ, स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल और स्वभाव को स्वचतुष्टय कहते हैं। प्रत्येक द्रव्य को अपना अपना द्रव्य, अपना अपना क्षेत्र, अपना अपना काल और अपना अपना भाव यानी अनंत गुण जो है, उसके भाव जो है वो प्रत्येक द्रव्य के अलग अलग होते हैं। इसलिए प्रत्येक द्रव्य अपने अपने स्वचतुष्टय में रहता है। चार बातें ना, द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव। और पर चतुष्टय यानी जो मेरा द्रव्य नहीं है, मेरा क्षेत्र नहीं है, मेरा काल नहीं है, मेरा भाव नहीं है, उसको पर चतुष्टय कहते हैं। अब आपने जो बताया ना बेन, वो किसकी बात बताई? अनंत चतुष्टय, और उसमें भी गलती की आपने। हाँ सर, हाँ शाबाश। कोई बात, कोई बात, हो जाता है उसमें। देखो ऐसा कहते हैं कि जो स्वचतुष्टय को पहचानेगा, स्वचतुष्टय को यथार्थतया जानेगा, उस पर विश्वास करेगा, उसको अनंत चतुष्टय की प्राप्ति होगी। क्या? क्योंकि मैं मेरे में हूँ, मैं पर में नहीं हूँ, ऐसा जब यह जीव खातरी लायक मानता है पर में, तो माथा मारने क्यों जाएगा? पर का मैं कुछ करूँ करूँ वाली भावना कहाँ होगी? वो अपने में ही स्थित हो जाएगा, अपने में ही रममाण हो जाएगा, तो उसको मोक्ष लक्ष्मी वरेगी बोलते हैं। और उसके पहले तो जैसा बहुत पैसे वाला होगा तो उसके घर में अपन बच्ची देने को जाते हैं ना लड़की, वैसे ये तो अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर आदि आदि, वो अभी तो 13वें गुणस्थान में प्राप्त किया इन्होंने, तो चलो मोक्ष लक्ष्मी आती है दौड़ते, ऐसा कहते हैं। हाँ, तो यहाँ कौन सी बात हो रही है? जो अपने में है, क्या शांति है, सुख है, वो अपने में से ही प्रकट होगा, पर से नहीं आएगा। क्योंकि जो पर में रहता हो, पर में विद्यमान हो, वो मेरे में कैसा आएगा? इसलिए यहाँ कहते हैं कि जिस शांति आनंद को प्रकट करना चाहता है वह अंतर में विद्यमान है, बाहर में नहीं। अभी आगे वाला जो है कल पढ़ेंगे हम। जावाणी के ज्ञान से तुझे लो पालो, तो वाणी मस्तकण सदा दे तू। भावना बिन नमो का मंत्र बोलना। बोलो जिनवाणी माता की है।